यही तो बात शंकराचार्य को जो पूछा था, प्रश्न जो पूछे थे ना, किसके मंडन मिश्र की पत्नी ने, शंकराचार्य जी नहीं जानते थे, इसलिए बिचारे ने कहा कि मुझे थोड़ा सा सहूलियत दीजिए इसको जानने के लिए, समझे ना। चलो वो बात दूसरी है। कहने का तात्पर्य ये कर्म है, कर्म, समझे ना। कर्म को समझने के लिए है धर्म पत्नी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, या स्त्री कहा जाता है, परंतु धर्म पति कहा जाता है क्या, धर्म पति कहा जाएगा तो धर्म पत्नी कैसी होगी, प्रश्न होता है कि नहीं है। देखो यही तो बात है, ये गृहस्थाश्रम कर्म को समझने के लिए है, ये क्या, ये भोग के लिए नहीं है, ध्यान रखो, ये काम के लिए नहीं है, वासना के लिए नहीं है, क्योंकि कर्म के रहस्य को तुम समझोगे तो वो कर्म कर्म नहीं होता है, वो कर्म धर्म बन जाता है, और वो धर्म ज्ञान बन जाता है, ध्यान रखो, वो धर्म प्रेम बन जाता है, प्रेम ज्ञान बन जाता है, और ज्ञान ब्रह्म बन जाता है। तो गृहस्थाश्रम किसके लिए है, हमारे शास्त्रों ने जो क्रम बनाया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये बताया क्या नहीं है, इसके क्या रहस्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि शादी नहीं करना, शादी नहीं करना ही ब्रह्मचर्य का अर्थ होगा क्या, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में वृत्ति को चलाने का आरंभ करना, ब्रह्मणी चलतीति ही ब्रह्मचारी, आपने प्रत्येक वृत्तियों को, इंद्रिय वृत्तियों को, बुद्धि वृत्तियों को, चित्त वृत्तियों को ब्रह्म के अंदर अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा के तरफ ले जाने के लिए ब्रह्मचर्य है क्या, ये सीखने के लिए, समझ, जानने के लिए, और ये गृहस्थाश्रम वो करने के लिए है कि हमारी वृत्तियां ब्रह्म में कैसी करे क्या, अर्थात हमारी वृत्तियां ब्रह्माकार कैसी बने, ईश्वराकार, भगवत का भगवताकार कैसी बने, इसके लिए गृहस्थाश्रम है। हम घर में रह करके भी सर्वव्यापक कैसा बने, इसका अभ्यास के लिए, और ये कर्म हम करते हैं, इस कर्म में वो सहयोगी है स्त्री जो है, क्योंकि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, अधूरा। कर्म के लिए दो वस्तु होना जरूरी है, क्या क्या होना जरूरी है, और देवदत्त भी होना चाहिए और गांव भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी ही तो गांव की ही कर्म संज्ञा होगी, देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त की क्रिया का फल, क्रियाफलशालित्वम कर्मत्वम, क्रिया का फलशालित्व जिसमें होता उसी की कर्म संज्ञा होती है क्या, क्रिया का फलशालित्व जिसमें होता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। तो कर्म संज्ञा किसकी होगी, देवदत्त की होगी या देवदत्त की क्रिया की होगी या गांव की होगी? गांव की होती है। क्या होती है? गांव की होती है। गांव की क्योंकि वो देवदत्त की क्रिया का फल है। गांव पहुंचना ये क्रिया का फल है, समझ ना। इसी प्रकार से यहां जो कर्ता जो जीव है वो जीव के द्वारा जो कर्म जो क्रिया हो रही है वो क्रिया फलशाली हुई है कि नहीं है, उसकी परीक्षा का नाम जो है कर्म है। हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो जान रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो भी कुछ है आपकी जो प्रत्येक वृत्तियां है, ये वृत्तियां कहां जाकर के सफल हो रही है इसको समझो। और ये समझने का काम जो है इसका नाम है कर्म। करते तो जा रहे हैं परंतु हमारी क्रिया सफल हो रही है का निष्फल हो रही इसका कभी हम, इसलिए तो भगवान ने कहा परिणाम है विषमिव, समझ। परिणाम पर दृष्टि होना चाहिए। परिणाम पर दृष्टि करने के लिए ये परीक्षा है तुम्हारी, गृहस्थाश्रम तुम्हारे जीवन की परीक्षा है, ध्यान रखो। ये परीक्षा केंद्र है, तुमने जो ब्रह्मचारी में जो अभ्यास किया है उसकी यहां परीक्षा है कि तुम्हारी वृत्तियां काम में जा रही है या तुम्हारी वृत्तियां ज्ञान में जा रही है। गृहस्थाश्रम निरर्थक नहीं है। इस परीक्षा में यदि तुम पास हो गए तो संन्यास के योग्य है, ब्रह्म के योग्य है। परंतु हम यहां गृहस्थाश्रम का अर्थ ही गलत करके बैठे हुए हैं, इसलिए तो रोता कौन है जो परीक्षा में फेल होता है, जो परीक्षा में फेल होता है उसको रोना पड़ता है कि नहीं? अब बताए कि अब परीक्षा में फेल हो गया तो इसका मतलब क्या, उसने अभ्यास ठीक ठीक नहीं किया, यही तो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसने अभ्यास ठीक ठीक नहीं किया है इसलिए फेल हो गया। हम रोते क्यों है? कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा अभ्यास ठीक है या गलत है, और रोते तो जाते हैं, रोते जाते हैं, परंतु ये रोना क्यों पड़े? यही बात समझाने के लिए तो कर्म करना है, परंतु कर्म तुम्हारा कैसा बने ये ध्यान रखो। देखो कर्म तुम्हारा धर्म बनना चाहिए, ये कर्म को धर्म बनाने के लिए गृहस्थाश्रम है, ध्यान रखो। कर्म को प्रेम बनाने के लिए वानप्रस्थाश्रम है, और कर्म को ज्ञान बनाने के लिए संन्यासाश्रम है। क्या ये ऐसे निरर्थक नहीं है? इसलिए तो हो तुम्हारा पुरुषार्थ का आरंभ जो होता है किसे होता है? धर्म से होता है। ये धर्म रूप पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम है। तुम यहां कर्म को धर्म बना सकते हो। यदि तुम्हारा कर्म धर्म बन रहा है तो ये समझ लो कि तुम्हारा कर्म उत्तम हो रहा है, तुम ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ रहे हो, समझे ना। हम कभी भी ये नहीं सोचते, कर्म तो करते जाते हैं परंतु हमारा कर्म धर्म बन रहा है या कर्म अधर्म बन रहा है, या कर्म विधर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। अब इतने लगते हैं कि हमारे कर्म से हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हा? और उस पैसे को लेकर के तुम कर्म कर रहे हैं, और वो पैसा तो तुम्हारा, तुम्हारे पास धन किसी का है क्या, हा? धन किसी का भी नहीं है तो तुम्हारा कैसा हो सकता है भाई, तुम्हारा होगा? जब श्रुति कहती कस्य स्वित धनम, धन किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है, और किसी का नहीं है उसी को ही तुम चाहते हो क्या? मकान में विस्तार के नीचे नीचे करके नोटों की गड्डियां छिपा छिपा करके रखते कि ये मेरा है, मेरे पास ही देगा, क्या दशा होगी? इसके लिए नहीं है, ध्यान रखो। यही तो हमारा कर्म विकर्म हो रहा है, यही भी विकर्म है, विकृत कर्म है, विरुद्ध कर्म है, ये अधर्म है। इसलिए श्रुति कह रही है कि कर्म को धर्म बनाओ, समझना। यदि उस ज्ञान को अनुभूति करना है तुम्हें, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वित् धनम्। इस श्रुति में जो ज्ञान निष्ठा बताई है, उस ज्ञान का अनुभव करना, उस ज्ञान में स्थिर होना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, यही करते हुए जिए, अर्थात कर्म को धर्म बनाने का पुरुषार्थ करते हुए जिए। कर्म करो परंतु कर्म धर्म, धर्म बनाने के लिए कर्म करो। हमारा धर्म कर्म बनना चाहिए। अधर्म किसके लिए? पुण्य के लिए। जो धर्म को धर्म पुण्य के लिए करता है ना, वो तो मरता है क्या? धर्म पुण्य के लिए जो करता है वो मरता है। चेतम मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, मरना पड़ता है कि नहीं पड़ता है उनको? ये मत समझ लो कि पुण्यवान अमर होता, नहीं नहीं, पुण्यवान भी मरता है, समझ। इसलिए धर्म पुण्य के लिए मत करना। और यह श्रुति यही संदेश देती है, धर्म पुण्य के लिए नहीं किया जाता है, धर्म प्रेम के लिए किया जाता है, धर्म उपासना के लिए किया जाता है, धर्म भक्ति के लिए किया जाता है, धर्म भगवत साक्षात्कार के लिए किया जाता है। ये धर्म का रहस्य है, धर्म पुण्य के लिए नहीं होता है। और पुण्य से तुम सुखी भी नहीं हो सकते हो, ध्यान रखो। तुम सुख की चाहना जो करते हो, धर्म से जो पुण्य होता है, उस पुण्य से कभी आज तक ना कोई सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। सुख का आभास मात्र हो सकता है, क्या सुख नहीं? देवता लोग सुखी है तुम समझते हो, पुण्यवान है, देवत्व योनि को प्राप्त कर दिया, तुम्हारे इस मर्त्य में जो मुकेश अंबानी है आदि बड़े बड़े पैसे वाले हैं, क्या ये सुखी है? सुखी दिखते हैं कि सुखी होते हैं, हाँ? पुण्यवान मानते हो कि नहीं इनको? पुण्यवान मानते हैं, पुण्य का ही फल है, परंतु पुण्यवान सुखी नहीं होता है। पुण्यवान तो हो, पापी से भी ज्यादा दुखी होता है, ध्यान रखो। तुम ये झूठी कल्पना तुम्हारे अंदर जो बैठी हो, निकाल दो उसको। पुण्यवान जो है पापी से भी ज्यादा परेशान रहता है, समझे? झोपड़पट्टी वाला तो कम से कम दो रोटी खा करके आराम से सोता है, परंतु इसको तो सोना भी नहीं मिलता बेचारे। खाने की तो बातें ही छोड़ो, खा भी नहीं सकता है। डॉक्टर कहता है कि खाना है तो भाई गोलियां खा लो, डाकू की खाओ चाहे डॉक्टर की खाओ, तुम रोटी नहीं खा सकते हो, खा सकते हो? ये तुम्हारे पुण्य का फल है। क्षण क्षण में मरना पड़ता है, इतना झोपड़पट्टी वाला नहीं मरता है बेचारा। वो तो दिन भर परिश्रम करता है, शाम को जो मजदूरी मिलती है उसका जो भी आटा दाल खरीद लेता है और अपना खा करके आराम से सोता है, कोई चिंता नहीं है उसको, समझना, निश्चिंत है। अब बताओ, और उसकी गरीबी ही पाप का फल है क्या नहीं है, और इसकी श्रीमंती पुण्य का फल है। अब दुखी कौन है और सुखी कौन है? इसलिए पुण्य के लिए धर्म, पुण्य के लिए मत करना। श्रुति ये बता रही है, समझ। धर्म का लक्ष्य प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, उपासना होना चाहिए, परमात्मा के लिए धर्म हो कहने का तात्पर्य है। धर्म अपने लिए नहीं होता है, धर्म परमात्मा के लिए होता है, और यही परीक्षा तुम्हारी यहां गृहस्थाश्रम में होती है। जो गृहस्थाश्रम में जो धर्म करता है उसका फल यदि प्रेम बनता है या परमात्मा के लिए होता है तो उसके अंदर भक्ति आ जाती है। क्या आती है? प्रेम आ जाता है, प्रेम भक्ति आ जाती है। जीवन में भक्ति आने का नाम ही वानप्रस्थाश्रम है, समझ लो। वन संभक्तो, जंगल में जाने का अर्थ वानप्रस्थ नहीं है, या पीला कपड़ा पहनना अर्थ है, पीला कपड़ा पहनने का अर्थ वानप्रस्थ कतई नहीं है, ये पाखंड है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन संभक्तो, परमात्मा का सम्यक प्रकार के यथार्थ रूप से भजन जीवन में आ जाए, प्रेम आ जाए। भजन का मतलब क्या? परमात्मा का रस। भजनम नाम रसनम, भजन का अर्थ होता है रस, रस परमात्मा का रस जीवन में आ जाए। वो परमात्मा के रस, रस का नाम ही प्रेम है, परमात्मा के रस का नाम ही भक्ति है, और उस रस, रस में हमारी बुद्धि आप्लावित हो जाए, वो उसका नाम है उपासना। वो रसई रसय रसो रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा तृप्तो भवति मन मंदो, तृप्तो भवति मस्तो भवति अमृतो भवति। ये रस जीवन में आ जाए तो तुम वानप्रस्थ, वानप्रस्थ समझ। और उसके बाद संन्यास, ज्ञान निष्ठ, अर्थात वो प्रेम तुम्हारा क्या करेगा? वो प्रेम किसके लिए हो? वो प्रेम संसार के भोग के लिए, संसार धन के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए मां गृद श्रुति ने निषेध कर दिया है, निषेध वहां है। ज्ञान निष्ठा के लिए निषेध जरूरी है। यहां तक विधि है, वानप्रस्थ तक विधि है, गृहस्थाश्रम विधि का आचरण है, और वानप्रस्थ विधि का संरक्षण है, और संन्यास, संन्यास विधि का रक्षण भी नहीं है और विधि का पालन भी, विधि का पालन भी नहीं है। यहां संन्यास का अर्थ होता है निषेध, निषेध सब का, ना विधि है, क्योंकि जिसका भी विधान किया जाता है वो ब्रह्म नहीं होता है, ये ध्यान रखो। क्या? जिसका भी विधान किया जाता है वो आत्मा नहीं होता है। विधान हमेशा जो होता है बाहर का होता है, दूसरे का होता है, दूसरे में होता है। और यहां ज्ञान निष्ठ का मतलब होता है आत्मनिष्ठ, और आत्म भिन्नम सर्वम मिथ्या। श्रुति ने निषेध कर दिया, एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्मण्य नानास्ति किंचन, ये निषेध। परंतु निषेध कैसा? सर्वम खल्विदम् ब्रह्म। क्या निषेध कैसा? क्या तुम जो उठा करके फेंक रहे हो या हटा रहे हो या क्या कर रहे हो, यही तो रहस्य है। श्रुति के वाक्यों में बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, समझ ना, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसमें विधि भी है और निषेध भी है, ना विधि है ना निषेध है, ऐसा ये वाक्य है, समझ लेना। क्या विधि निषेध से परे भी है और इसमें विधि भी है और निषेध भी है। निषेध क्या? जो संसार है या जो भी जिसको भी तुम मानते हो या देखते हो जानते हो, कहा कि ये ब्रह्म नहीं है, इसका निषेध है। और फिर श्रुति कहती ये भी सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। जो तुम देखते हो ब्रह्म है, जो सुनते हो ब्रह्म है, जो चलते हो ब्रह्म है, जो बोलते हो ब्रह्म है। इसका मतलब अधिष्ठान, अधिष्ठान में ले जाना आपको, एक वस्तु में ले जाना, अन्य का बाध करना, समझ। इस प्रकार से ये श्रुति के वाक्य है। और ये हो जाओगे तो फिर हो जाना, स्थिर हो जाना, ये होने के बाद ब्रह्म ही बनना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसलिए ज्ञान में भी तीन कोटियां जो की है, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरिष्ठ और ब्रह्मविद वरियान, ये तीन कोटियां है ज्ञानी के अंदर भी, समझना। सात भूमिकाएं तो आप लोगों ने सुनी होगी, वो तो मोक्ष के लिए सात भूमिका है, ज्ञान की भूमिकाएं नहीं, ये मोक्ष के लिए है। परंतु ये ज्ञान की कोटिया है, अर्थात यहां ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद हो जाना और ब्रह्मविद वरिष्ठ हो जाना, अर्थात ज्ञानी होना और ज्ञान निष्ठ हो जाना, अंतर है कि नहीं है? तो ये ज्ञान निष्ठ, ब्रह्मविद वरिष्ठ, और फिर ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्म ही हो जाना, भेद को समाप्त हो जाना, समझ, भेद की पूर्ण रूप से समाप्ति। और इसी की तरफ संकेत करते हुए यह श्रुति कहती है, न कर्म लिप्यते नरी, एवं पई नान्य थे तो स्त्री, न कर्म लिप्यते नरे। ऐसा ये करना ही तुम्हें जरूरी है, इसके अलावा तुम्हारा उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी होने के लिए या ज्ञाननिष्ठ होने के लिए या ब्रह्मविद वरिष्ठ या ब्रह्मविद वरियान होने के लिए, इसके अलावा दूसरा कोई तुम्हें मार्ग नहीं है। इसलिए कर्म करे, परंतु कर्म लिम्पाय मान न हो, न लिप्यते करे, न लिप्यते नरे। ज्ञानी कर्म करता है, इसलिए तो मैंने कहा कि धर्म किसके लिए, कर्म किसके लिए करे, धर्म बनने के लिए, अर्थात परमात्मा के लिए करेंगे। परमात्मा के लिए करेंगे तो तुम्हारा, तुम्हारे साथ कर्म का लेप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्म तुम्हारे साथ लिम्पायमान नहीं होंगे। भला तुम कर्म में हो, परंतु कर्मठ नहीं बनोगे तुम। क्या नहीं बनोगे? कर्मठ बनने का अर्थ है कर्म लिम्पायमान हो जाना, समझ। वो कर्म में है और कर्म उसके अंदर है, समझे ना। जो कर्म उसके अंदर आ जाए तो कर्मठ बन जाओगे। कर्म करने से कर्मठ नहीं होता है, और कर्मठ नहीं होता है तो पाप पुण्य भी नहीं होता है। कर पुण्य पाप पुण्य किसको होता है? कर्मठ जो होता है, अर्थात कर्म जिसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर किस रूप से आता है? संस्कार रूप से। और वो उसमें क्या होता है? आसक्त हो जाता है। तो ये आसक्त हो जाना कर्मठता है। क्या है? आसक्त, कर्म में आसक्ति हो जाना कर्मठता है। क्यों? फल में भी आसक्ति होगी, कर्म में आसक्ति होगी तो फल में भी आसक्ति होगी, भोग में भी आसक्ति होगी, चाहे सुखात्मक भोग हो चाहे दुखात्मक भोग। इसलिए यहां श्रुति कहती है कर्म तुम्हें करना ही है, जीवन भर करना है, 100 वर्ष तक करना है, परंतु कर्म में यही सावधानता हो कि वो कर्म कर्म के साथ लिंपाय मानता न हो। असक भगवान ने भी गीता में स्पष्ट कर दिया है, असक किरण विश्वंग पुत्र दार गृहादिशु नित्यंत समचित्तत्व निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु। क्या रहो, यही रहना है तुम्हें, कहीं कहां जाओगे तुम छोड़ करके? हाँ, संसार छोड़ने का प्रयत्न करने वाला नादान पुरुष है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये संसार ही तो तुम्हारे अध्यात्म की परमार्थ की परीक्षा है, और इस परीक्षा में पास हो जाओगे तभी तो तुम पाओगे। पद को पाना है तो परीक्षाओं में पास होते हुए ही जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पद किसको मिलेगा? इसी प्रकार से यदि ब्रह्म पद पाना जाना अब पाना है तो धर्म रूपी परीक्षा में पास होना है, प्रेम रूप परीक्षा में पास होना है और ज्ञान रूप परीक्षा में पास होना है। तीन परीक्षाएं पास करना होती है, ध्यान रखो। क्या है ये? गृहस्थाश्रम में कर्म करने के लिए ही है, समझना। ये मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए ही है, परंतु कर्म धर्म बनाने के लिए। श्रुति ये कहती है कि कर्म को धर्म बनाओ, धर्म को प्रेम बनाओ, प्रेम को ज्ञान बनाओ और ज्ञान को ब्रह्म बनाओ, और तुम ही बन जाओ। दूसरे को नहीं बनाना है, समझ, तुम्हें ही बनाना है, अपने को ही बनाना है। इसलिए यहां श्रुति कहती है कि न कर्म लिप्यते नरे, ये कर्म के अलावा तुम्हें दूसरा कोई साधन नहीं है, कर्म करना ही चाहिए, परंतु कर्म धर्म के लिए करना चाहिए। अब धर्म की परिभाषा तुम अपने दृष्टि से मत करना, शास्त्र तो बता देगा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र ने जो विधान किया है उस विधान उस विधि का पालन करोगे, उसी प्रकार से करोगे तो वो कर्म धर्म बनता है, समझ। तुम्हारे मन से किया हुआ कर्म धर्म नहीं बनता है। बाधा कर्म में बाबा वाक्यम प्रमाणम न शास्त्र वाक्यम प्रमाणम, ये ध्यान रखो। कर्म करने के लिए लोक वाक्य प्रमाण नहीं है, शास्त्र वाक्य प्रमाण है, वेद वाक्य प्रमाण है, श्रुति वाक्य प्रमाण है। उसके अनुसार यदि आप करते हो तो आपका कर्म धर्म बन जाएगा, और वो धर्म ज्ञान का साधन बन जाएगा, ज्ञान मुक्ति का साधन बन जाएगा। इसलिए ये श्रुतियां ज्ञान की विरोध में नहीं है, ये कर्मनिष्ठ बनाने के लिए नहीं है, ये धर्मनिष्ठ प्रेमनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ बनाने की ही साधन है, ये समझ लेना। इसलिए ये शंका कोई मत करे। अब बहुत कुछ है जो हमारी जो 10-12 दिन का परमात्मा ने जो मौका दिया सेवा का, बड़ा आनंद हुआ और बड़ा चिंतन भी, बड़ा ईशावास्य उपनिषद जो बड़ा बड़ा चिंतन ही है, समझ लेना। ईशावास्य इस मंत्र के ऊपर बहुत बहुत विचार है, बहुत चिंतन है, समझ लेना, क्योंकि यही संपूर्ण जगत का सार है, सार, समझ। और सार जो होता है ना बड़ा अर्थगर्भित होता है, सूत्र है ये। तो जितने भी जो सेवा हो गई है वो मैं परमात्मा के चरणों में समर्पण करता हुआ और स्वामी प्रेमपुरी जी के चरणों में समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और कल से जैसा आप लोगों का जो प्रोग्राम है वह अभी गिरीश भाई आप लोगों को बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। जैसा मैं विदित है जगदीशपुरी जी महाराज की तबियत की अस्वस्थता और अभी संपूर्ण स्वस्थता, बहुत ही यहाँ ही प्रेमपुरी आश्रम में दूसरे मंदिर पे वो विराजते हैं और शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो गया है। और उसका यही परिणाम है कि जो हम यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में जो भी आते हैं, कुछ शुभ लेके आते हैं, कुछ शुभ विचार लेके आते हैं, कुछ शुभ आशीर्वाद लेके आते हैं, और संतों के और ईश्वर के आशीर्वाद यहाँ साक्षात है, जिसका हम हमेशा अनुभव करते हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि भागवत का उद्घाटन आज ही हो गया। महाराज जी आप विराज हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का जो प्रवचन है वो व्यासपीठ के अनुरूप ही था। अगर गौर करें हम तो जो जो बातें महाराज जी ने की थी उसमें परमात्मा की बात की, पुण्य की बात की, श्रद्धा की बात की, तत्परता की बात की, और जो भी हम परमात्मा पर निष्ठा लेकर जो भी कार्य करें तो उसके फल की सुंदर बातें महाराज जी ने बहुत ही ठोस रीत से की।